from this ocean of birth and death. So today Shri Gurudev will be speaking some Harikatha. I will request all of you to listen very attentively. I know there are some guests. I will request maybe they can come in the front, those who don't get opportunity to meet and hear from Gurudev that often. So those, maybe we can give them some space, those who are the guests. If you would like to come in the front, you can come here. And Gurudev is going to be speaking in Hindi and we will translate in English. Today's program is sponsored by Hema Didi and her husband, Riyal Krishna Prabhu. And the Murtuwani family. So we are very grateful to them to arrange for all of us to come together and hear from Shri Gurudev. So before we start, our temple president, Tarun Krishna Prabhu, he has a very important announcement to make.
Hare Krishna. Dhanyavad. I really want to not take much of your time. Just an opportunity I saw to get blessings from Srila Gurudev, and at the same time, in your presence of everybody here, especially the Krishna Prabhu, to all know that the first time after we purchased the land from Keith Harrow and Highway 6 to build the temple, on Keith Harrow and Highway 6 on the northwest part of Houston where there is no temple, we requested Gurudev when he came to Houston first time before installing the Sheshnad Deity, the eggs that he used to dig the land, and that's what I want to present to Srila Gurudev for his blessings in presence of the distinguished gathering here. চন্দ্রিকা এন্ড শ্রীমন্ত দিদি প্রিপেয়ার্ড
যখন ভূমি পূজন হয় না জমি খুঁজেছিলেন প্রথমে এটা দিয়ে এটা গোল্ডেন কালার করে দিয়েছে
কি
দেখাচ্ছে আর কি আপনাকে
আপনার আপনি এটাকে ব্লেস করে দিন তাহলে আমরা সকলকে এদের বাড়িতে রাখবো গৌর প্রেমানন্দে
Yes, they're on the knee.
Yes, but it doesn't have a lead, but they're pressing somehow. Hello. Could you push on some?
I don't know. Here is she.
Hare Krishna.
Hello.
Gyanat Miram Dasya. ज्ञानंजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मंसाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरचन्द्राय राधिकायै तराय krishnaya krishna bhaktaya tad bhaktaya tavai vasmi tavai vasmi najivam tayamina iti vigraha radhe charanam. मैं सबसे पहले अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे शिक्षा गुरु श्रीमद भक्ति वेदांत
स्वामी
महाराज जी के शरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ।
First of all, I would like to offer my humble obeisances unto the divine lotus feet of my eternal spiritual master, Om Vishnu Pad Paramahansa Parivrajitacharya, Shri Srimad Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. And then I would also like to offer my obeisances unto my Shiksha Guru, Om Vishnu Pad Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj.
समय हर वर्ष में गोमती नदी के किनारे 88,000 ऋषि कलयुग के भय से हमें क्या करना चाहिए वे सत्र कर रहे थे। ला रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप तो सब प्रकार से योग्य हैं, अपने गुरुदेव से सब कुछ सुना है, विशेषकर कलयुग के मनुष्य बड़े छोटी उम्र के दुर्भागा होते हैं, उनकी बुद्धि भी मंद रहती है, इसलिए आपने गुरुदेव जी के मुख से सुन करके क्या निर्णय किया है, आत्मा कैसे सुखी हो, जेना आत्मा संप्रसिद्ध, आत्मा किससे सुखी हो सकती है, आप कृपा करके बतलाइए। उन्होंने ये नहीं पूछा जे तुम कैसे सुखी हो सकते हो, उन्होंने पूछा आत्मा कैसे सुखी हो। इसलिए सुत गोस्वामी अपने गुरु को प्रणाम करके
Once upon a time, in the land of Bharat, on the banks of the river Gomati, 88,000 sages had gathered, and they were having a discussion that because Kaliyuga is going to begin, so how should we be able to overcome the bad influence of Kaliyuga? So they asked Sut Goswami, O Sut Goswami, that you are qualified in every way and you have also heard from your spiritual master. Especially in this Kaliyuga, the human beings will have a very short life. They are also very less intelligent and very, very unfortunate. So, you please tell us what you have heard from the mouth of your spiritual master and what have you determined as a conclusive truth. That how can Atma, the soul, be happy? Please explain this to us. They did not ask that how will you become happy. They asked that how the soul can become happy. At that time, Sut Goswami offered obeisances to his spiritual master and started to speak.
Tab Sut Goswami, apne Guru Dev, Sukadev Muni ko pranam kiya. और कहना आरंभ किया सबई पुंसान परो धर्म जतो भक्ति गधो खजी अहे तु क्या व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। निश्चित रूप में केवल मनुष्य का नहीं प्राणी मात्र का जो धर्म है वह कृष्ण के चरणों में अहेतुकी भाव से बिना किसी कारण के जो भक्ति हो निरंतर मधु की धारा की भांति तल धारावत अविच्छिन्न गति से चित्त की वृत्तियां लग जाए उसे उत्तम आभक्ति कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की कृपा से इसी के पगला लेके श्लोक बनाया जो कहीं भी ऐसा नहीं है, ऐसा सुंदर श्लोक बनाया जिसे हरिदास ठाकुर नाचने लगे सुनकर और भक्त लोग बड़े खुशी हुए। और वह श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माजनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम।
सो आफ्टर ऑफरिंग ओबिसेंसेस टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर श्री सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी स्टार्टेड टू स्पीक सर्वहि पुंसः परो धर्म यतो भक्ति अधोक्तजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। That not only human beings, but the very religion of each and every living entity is to perform unmotivated bhakti or the lotus feet of Sri Krishna. Just like the a stream of honey flows uninterrupted, tal bharavat, without any interruption and without any other ulterior motives, all the sentiments of the heart should be engaged in the service of Krishna. So this is Uttama Bhakti. Sri Rupa Goswami, by the causeless mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he composed a very beautiful verse explaining what is Uttama Bhakti. Hearing this verse, Sri Haridas Thakur started to dance. And this verse is Anyabhilashita Shunyam Gyan Karmadi Anavritam Anukulen Krishna Anushilinam Bhakti Rutama. Shri Padmada Maharaj will give the meaning of this verse.
Astodasata Sishma Bhakti Vedanta Swabhamanda Sai Maharaj,
and Om Vishnupad, Paiga Yogacharya Bhajya, Ashtodara Sudasimad Bhakti Vedanta Swaminarayana Nrsimha Maharaj. I pay my obeisances at lotus feet of my spiritual grandsire, Nitya Lila Prasun Vishnupad, Sri Bhakti Pradhan Kesava Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prasun Vishnupad, Sri Bhakti Goswami Maharaj. I pay my obeisances on Krishnavas and Krishnavis, everybody to the Sannyasis. As Srila Gurudev ordered me, what's the Rupa Goswami Pad composed in this slope, Anna Vilasita Sunnam, Jnana Karma Tanavitam, Anukulena Krishnam Silanam Bhakti Duttama, Anna Vilasita Sunnam. When you ever want to practice Krishna consciousness, and one day you have cherished desire to attain the abode of Krishna to serve him there, because it's mentioned in our scriptures, the Bhagavad Gita, Yad Gattvana Nivartanti Tad Dhamo Paramam Mama. We will go to the abode of Bhagavan, Bhagavan Krishna, no need to come back again. Some time we think, oh, we have fallen down from Vaikuntha planet, it's not true. So, Anna Vilasita Sunnam, free from all kind of another desire. We are only one desire will be there, to please Krishna. And Anna Vilasita Sunnam, here, why Rupa Goswami Pad not told Anna Vilas Sunnam, why Anna Vilasita? Because in Vrindavan stage, we want or not some other desire must be there. But always we should not ask Krishna to help us, to help me, protect me, not like this. If any life-threatening warning came at that time, you don't know what is his position. At that time, you can, oh, Krishna, help me, or save me, protect me, this is another thing. It's for yourself. But always have to be remember in your mind that I have to please Krishna. So, other than pleasing Krishna, other desire must not be there. So, here Krishna means Srila Gurudev and Vaishnava will include in Krishna. Anna Vilasita Sunnam. Jnana Karmata Anavitam. Our devotion must not be covered by gyan and karma. Without gyan and karma, none can survive in this world. We want or not, Bhagavad Sri Krishna told in Bhagavad Gita to Arjuna for the whole world, nahi kasti chanavapi yatu tishtakta karma krit. Without being karma, none can survive in this world for a moment. We are sitting, we are standing, we are sleeping, we are walking, even breathing is karma. So karma is needed. And again, what is this world? Who am I? What is this? What we know anything in this world of gyan, knowledge, is also needed. But we have to use this karma and gyan for the service of Hari Guru Vaishnava. If we use this gyan and karma for service of Hari Guru Vaishnava, then it will not cover bhakti. Other than this, bhakti will cover. Especially gyan here, three types. Tatpadartha gyan, Tam Padartha gyan, and Ji Brahma Yukta gyan. Means, Tat means Krishna, Bhagavad gyan. Tam means Jiva living entity's knowledge. And mix with, emerge with Brahma and Bhagavan and Ji. This is called Ji Brahma Yukta gyan. We have to free from these three gyans. Especially this Jiva Brahma Yukta gyan. Jnana Karma Dhanavitam Anukullena Krishna Anusilanam. We have to serve Krishna with favorable mood. But for this reason, we have to know in details that if Krishna is happy, then it will be bhakti. But sometimes it seems the definition under extension, sometimes over extension. We have to give little explanation. Like, in one hand, we are telling that we have to do everything to please Krishna, or it is favorable for Krishna.
Hindi,
what is Hindi? What is Hindi?
So, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कैसे कृष्ण प्रसन्न हो और कृष्ण के सुखकर हो. तो दो उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ जो हम गुरु जी से सुना है. एक तरफ तो जब कृष्ण छोटे थे, मैया यशोदा उनको नहलाती कपड़ा पहना थी, सुंदर सिंहासन पर खेलने गई थी। थोड़ी देर में कृष्ण ने क्या किया, मिट्टी में लोट पोट करके कपड़ा का गंदा कर दिया। मैंने बताया, अरे नटखट, अभी तुझे इतना सुंदर पहना है कपड़ा, इतना जल्दी गंदा कर दिया। कान पकड़ करके एक छोटा सा तमाचा लगा दिया। कृष्ण रोने लगे हुआ हुआ करके। तो कृष्ण तो इधर रो रहे हैं, कृष्ण को तो ये आनंद नहीं हो रहा है, ये क्या भक्ति है? प्रश्न हो सकता है, ये कैसी भक्ति है? जो सब लोग कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है, मैया यशोदा कृष्ण को बुला रही है, ये क्या भक्ति है? दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, तब उसके बाद तुरंत हम लोग विचार करके दिखाऊंगा। जब कृष्ण मथुरा में आए, कंस उनको निमंत्रण देके ले आए, जब मरने का किसी समय आता है, वो काला नागिन को उठाकर गले में लगा होता है, हार उल्टा हार समझ करके। कृष्ण ब्रज में थे आनंद में, कृष्ण नोता देकर के बुला के ले आए कंस जी। अब कृष्ण कुबला स्त्री को बात करके जब कंस के एरिना में पहुंचा अखाड़ा में, चारुकर मुस्टिक्स के साथ कृष्ण और बलदेव का युद्ध हो रहा है, मल्ल युद्ध। इस युद्ध देख करके जो मथुरा के रमणीया थी, वो तो रहो इन सभा को धिक्कार है, जो अन्याय करता है और अन्याय को सपोर्ट करता है, सहन करता है, दोनों समान दोषी है। पर देखो तो इस सभा में ये कृष्ण और बलदेव के दुदुम के बच्चे हैं, और चानुर मुस्टिक पर्वत तुल्य इतने बड़े पहलवान है, कैसे इसके साथ सब युद्ध हो सकता है? कुश्ती होना चाहिए, दंड होना चाहिए, समान बराबरी के साथ, ये कैसे अन्याय है? ये कोई भी इनका प्रतिवाद नहीं कर रहा है, यूं नहीं कर रहा कंस के दांत से, इस सभा में छोड़कर चला जाना चाहिए। और कृष्ण को कंस और चानुर मुस्टिक कृष्ण बलदेव के साथ युद्ध कर रहे हैं, घुसा मार रहे हैं, कृष्ण बहुत खुश है, क्यों इतने दिन के बाद विवेक आसन कर रहे हैं। कृष्ण खुश तो है, क्या चानुर मुस्टिक का ये भक्ति कहा जाएगा? नहीं, क्यों? चानुर मुस्टिक यद्यपि युद्ध में कृष्ण को सुख पहुंचा रहा है, किंतु उन लोगों का आभ्यंतरीण इच्छा क्या है? कृष्ण को जान से मारने की उनका अंदर इच्छा है, इसलिए ये कृष्ण को बाहरी दृष्टि से, आपात दृष्टि से सुख लगने पर भी ये बिल्कुल भक्ति नहीं है, भक्ति के विरुद्ध है। अब दूसरी ओर मैया यशोदा कृष्ण को बातों बात में रुलाती है, मैया ये दे मुझे, मैया का नियत तेरे ठीक नहीं है, तो कृष्ण रोने लगे। जैसे मैया यशोदा दुधि मंथन कर रही है, करके मक्खन निकालकर कृष्ण के हाथ में दे दिया, कृष्ण खा रहा था, खाता है, देखा शाम के समय था, चंद्रदेव उदित हुए थे, इसमें देखा क्या चांद का परछाई खाली में पड़ा पानी में, तो मैया उसको दे, मैं इसको खाऊंगा। पकड़ लिया, कैसे पकड़े थे चंद्र को? मैया ने बताया ये ठीक नहीं है, जहर लगा हुआ है, कृष्ण रोने इसको भी चाहिए, कृष्ण रो रहे हैं, तो ये कृष्ण इधर भी रो रहे हैं, मैया उनको कपड़ा गंधाने के समाचार वही रो रहे हैं, ये क्या भक्ति है? हाँ ये उत्तम भक्ति है, क्यों? क्योंकि मैया यशोदा कृष्ण का भलाई चाहती है, और मैया यशोदा चाहती है मेरा बच्चा बड़े होकर अच्छा मनुष्य बने, इसलिए ये करती है, इसलिए मैया यशोदा का ये भक्ति है, ये संपूर्ण उत्तम भक्ति है, ये कृष्ण रोने पर भी ये भक्ति है। और एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैया यशोदा के स्तन गोदी में बैठ कर कृष्ण स्तन पी रहा था, और उधर रूपन रूपन करके गिर रहा था, मैया यशोदा कृष्ण को जबरदस्ती बैठा करके दूध देकर रक्षा किया, कि कृष्ण के लिए दूध है या दूध के लिए कृष्ण है, कृष्ण सुपीरियर है या दूध सुपीरियर है। मैया यशोदा ने सोचा मेरा स्तन के दूध से न तो रसमलाई बनेगा, न रसगुल्ला, न छली, न दही, कुछ नहीं, अभी तो कृष्ण मेरा स्तन पान कर रहा है, बाद में क्या खाएगा, इसलिए दूध को रक्षा करना है, कृष्ण की सेवा के लिए है। श्री मैया यशोदा यह उत्तम भक्त की जितने भी एक्टिविटी है ये सब उत्तम भक्ति है, अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम, इस प्रकार हो इसको उत्तम भक्ति कहा जाएगा, इससे न हो तो इसको उत्तम भक्ति नहीं कहा जाएगा। ये अन्ना मिला सुनना ईश्वर का मूल तात्पर्य है। हरे कृष्ण
भक्ति। पहले साधन करने के संकल्प
I'll speak very briefly what Srivad Madhava Maharaj spoke. So, from the point where he started speaking in Hindi, that how will is Krishna pleased? Said he will explain by giving some examples. When Krishna was a young boy, so he's playing outside, and Mother Yashoda had just bathed him and put fresh clothes, and he went outside playing in the mud and came back with mud smeared all over her, all over his body. So Mother Yashoda became very upset and squeezed his ear and said, "What have you done?" And Krishna started crying. So is this considered bhakti? One may ask this question. On the other side, when Krishna was asked to come to Mathura by his maternal uncle Kans, it is said that when someone's death has come, then that person wears a snake around his neck like a
flower garland.
So Krishna was having a good time in Vrindavan, but Kansa, because his death had come, invited Krishna to come to Mathura. There Krishna killed Kuvalai Peet, and then when he was having a fight with a wrestling match with Charnur and Mushtik, all the ladies of Mathura who were watching this wrestling match, they were wondering that what great cruelty is this? A person who performs cruelty and the person who supports it, Anyai, both of them are equally partners in that offense, in that bad deed. So they were thinking like this, but Krishna was actually having a good time. He was enjoying fighting with Chandu and Mushtik. So one may think, is this bhakti? Because Krishna is having a good time, he is enjoying it. But actually this is not bhakti, because the mood of the internal desire of Chandu and Mushtik was to actually harm Krishna, to kill him. On the other hand, at every other instance, many times Mother Yashoda makes Krishna cry. One time she had fed Krishna with some butter, and then Krishna saw an image of the moon in a pot of water and said that he thought this is also butter, and he wanted that. So he told Mother Yashoda, "I want to eat this." So Mother Yashoda said, "No, no, you cannot have this because this is smeared with poison." But Krishna started insisting, "No, I want this," and he started crying. So like this, but Mother Yashoda, what is she thinking? She is only thinking of good for Krishna. So similarly, when Mother Yashoda once was breastfeeding Krishna and she saw that milk was boiling on the on fire, so she went, she put Krishna on one side and went to take the milk off the stove. So, because she is thinking that, now one may question, is Krishna superior or milk is superior? So why does she leave Krishna to go and take milk off the stove? So, but Mother Yashoda, what was she thinking? She is thinking that with my breast milk, I cannot make any rasmalai or kheer or many different preparations for Krishna. But with this milk, I can make so many different preparations for the pleasure of Krishna. So she is thinking only of how to serve Krishna, how to make him happy. So her mood is, when she is scolding Krishna also, because this is Narvat Leela, human-like pastimes, she is thinking that I have to discipline my child so he should, when he grows up, he should be a good man. So this is actual bhakti, this is Uttama bhakti.
Ye bhakti श्रद्धा से आरंभ हो, श्रद्धा माने क्या, इसके दो पहलू हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे,
सुदृढ़ निश्चय,
सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले
सर्व कर्म कृत है।
कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ हो गया, ऐसी दृढ़ निश्चयता को श्रद्धा कहते हैं। किंतु ये इसका बाहरी लक्षण है, उसका अंतर लक्षण क्या है? कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति,
कृष्ण सेवा वासना,
जिसके अंदर में गुरु की विश्रम रूप से सेवा करते 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 यह भाव आ जाए कि कृष्ण की सेवा करने से सब कुछ हो जाता है और कृष्ण का मैं सेवा करूंगा, ये प्रवृत्ति होना बहुत आवश्यक है। तब यही भक्ति श्रद्धा से निष्ठा दृढ़ निश्चयता, किंतु जान बुझ करके जो निश्चयता की जाती है वो अभी तक तो भक्ति का लक्षण क्या है?
अन्नाभिलाषिता सुन्नम अनुकुलन कृष्णानुशीलनम,
अभी तक अभी निष्ठा नहीं हुई, दृढ़ निश्चयता। प्रहलाद महाराज जैसे हिरण्यकश्यप उसको मार डालना चाहता है तो अभी उसने कृष्ण नाम नहीं छोड़ा।
हरिदास ठाकुर खंड खंड हो देह यदि जाए प्राण,
हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि खंड खंड जाए
हो देह यदि जाए प्राण,
हो देह प्राण
तो बुना बदन में
छड़ी है। यदि कोई खंड खंड टुकड़े टुकड़े भी कर देगा तो मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, ये तो हुआ निष्ठा। यही निष्ठा बढ़ करके स्नेह
रुचि आसक्ति
स्नेह हो
मान,
स्नेह माने क्या? यदि श्री विग्रह को अच्छी तरह से सजा दिया जाए
रुचि,
तब तो देखने में रुचि लगती है। और ठाकुर जी को नंग धंग खड़ा कर दो तो कोई दर्शन करने के लिए निकट भी नहीं जाएगा। इसके बाद में आसक्ति होती है, पहले आसक्ति होगी साधन के प्रति और फिर यही बढ़ते 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 कृष्ण के प्रति हो, यही भक्ति करते करते जब और आगे बढ़ेगी तो भाव भक्ति हो। भाव भक्ति किसको कहते हैं? साधन भक्ति तो सभी समझते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं गास्यं सख्यं आपनं। किंतु जब यही भजन करते 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 जब आदमी और ऊपर उठ जाता है तो उसकी भाव भक्ति साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में बदल जाती है। इसलिए भक्ति तीन प्रकार की हुई, साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। यही प्रेम भाव किसको कहते हैं? शुद्ध
सत्व
विशेष आत्मा
प्रेम सुजांश साम्य
प्रेम सुजांश साम्य भाव रुचि भी चित्तम आश्रिन्न
त्रिदशो भाव।
भजन कर रहे हैं, किसी को सुदामा के प्रति रुचि है, सुदामा जैसे क्रीड़ा के द्वारा खेल के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करता है, ये सब खरस। कोई ललिता जैसी भक्ति चाहता है, कोई जसोदा मैया जैसा, कोई गोपियों जैसा, तो कृष्ण के साथ में गोपियों का भी स्मरण करते 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 चलेगा तो उसको रागानुगा भक्ति होगी। यही रागानुगा भक्ति साधन करते 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 तब प्रेमा भक्ति होगी। इस जगत में इस शरीर से प्रेमा भक्ति नहीं होती। शरीर इतना समर्थ नहीं है। यदि कोई प्रेमा भक्ति करे तो शरीर या तो छूट जाएगा नहीं तो पागल हो जाएगा। इस तरह से वही भक्ति स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मादन इत्यादि भक्ति की चरम अवस्था जो कि राधा जी के अतिरिक्त कहीं नहीं है, कृष्ण में भी नहीं है, वहां तक पहुंच जाती।
So this bhakti, Uttama bhakti that was explained, how does it begin? It starts from Shraddha or faith. There are two aspects of Shraddha. The first aspect is that one develops this determination that if I perform bhakti of Sri Krishna, then everything else will be taken care of. And one develops this very strong nishchay determination. This is the external symptom of Shraddha. The internal thing is, when one develops the desire to serve Sri Krishna, that is called Shraddha. One who performs seva, service to the spiritual master with his mind, body and soul, Vishambhen Guru Sevaya, one who performs such service to Sri Guru, then he develops such bhav, such desire to serve Sri Krishna also. That I will serve Sri Krishna, and if I serve Sri Krishna, then I do not have to perform any other activities, no service to any other demigods or any other material activities. Serving Krishna will fulfill everything. So this strong determination, this nishtha, just like Prahlad Maharaj, even when Hiranyakashipu was torturing him, he did not give up his devotion, he did not give up chanting. Similarly, Haridas Thakur, he said, even if they cut him into pieces, he will not give up chanting of the holy name. So this is from, like this, from Shraddha, the bhakti develops further, nishtha, and then it develops into snehim. What is the meaning of snehim? Snehim means ruchi, asakti, and then snehim. So then, this is when Sri Gurudev is giving example, when one develops some love, what is the symptom? That normally when the deity of the Lord is decorated very nicely, we feel some attraction. But when the deity is not decorated very nicely, then no one wants to take their darshan. But this is not the symptom of ruchi. So when one actually develops love, then one will not see just the paraphernalia. One will actually, even if the deity is not dressed so exquisitely, one will feel the attraction. So this develops further. So sadhan bhakti, you all know, shravanam, kirtanam, vishnu smaranam. The sadhan bhakti, as it develops into bhav bhakti by doing bhajan constantly. So bhakti is in three stages: sadhan bhakti, bhav bhakti, and then prem bhakti. And what is bhav bhakti? Shuddh sattva visheshatma, Gurudev is explaining that one develops the desire to do bhajan, just like, for example, someone may feel attracted the way Sudama performs service to Sri Krishna. So this mood of friendliness, friendliness, sakya bhav. Someone may want to serve like Lalita ji, someone may want to serve like Mother Yashoda, someone may want to serve like the Gopi. So when, while performing bhajan of Krishna, one is trying to also think of the service the way these eternal associates perform. Like this performing, this is then called Raganuga Bhakti. And doing sadhana this way, slowly, slowly, Prema Bhakti will develop. But one cannot perform Prema Bhakti with this material body. This material body is not capable of performing Prema Bhakti. If one develops it, either he will give up this body or he will turn mad. He will become pagal. So, yeah.
Krishna, Vrindavan se Mathura aaye, Mathura mein aaye, aur Mathura mein bahut dino tak rahe. Krishna isi beech mein गुरुकुल उनको भेजा गया सांदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए. 64 दिनों में 64 प्रकार की कलाएं सब कुछ उन्होंने सीख. गुरु से पूछा कि दक्षिणा क्या लेंगे, क्योंकि हमारा लड़का समुद्र में चला गया फिर निकला नहीं. उन्होंने गुरु पुत्र को कृष्ण ने ला दिया. कहां से?
जमपुरी से.
जमपुरी चले गए. वहां से उसको मरे हुए को भी जो आत्मा थी उसको गया. ये शरीर तो रहेगा नहीं. इस प्रकार से उद्धव को एक दिन कृष्ण छत के ऊपर में बैठे हुए जमुना की तरफ में देखा. देखकर के उनके आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे. उद्धव जी उनको खोजते हुए ऊपर में गए. उद्धव जी ने, ये क्या आप रोते हैं? तो हाँ, मुझे याद आ गई हमारे माता पिता नंद जसोदा का प्रेम, सखाओं का प्रेम, गिरिराज गोवर्धन, यमुना नदी, ये सभी मुझे याद आ गए. इसलिए ब्रज में हमारे माता पिता बड़े प्रिय हैं, उनसे भी किंतु अधिक हमारे प्रिय गोपियां हैं, जिन्होंने लोक लज्जा धैर्य शील कुल धर्म सबका उल्लंघन करके कृष्ण से मिली, कृष्ण की सेवा करती थी. उन गोपियों को केवल जी रही है किस लिए? उनका प्राण मैं हूं, हमारा प्राण वो गोपियां हैं. इसलिए मैं यदि न मरूं तो वो नहीं मर सकती, नहीं तो वो मर जाती कभी भी. इसलिए उद्धव तुम ब्रज जाओ और मेरे माता पिता को सांत्वना देना और अंत में गोपियों को भी सांत्वना देना. तब उन्होंने अपना रथ कंस वाला वो उनको दिया और उनको वहां पर भेजा. कृष्ण ने सोचा कि गोपियां मेरे दीरा में तड़पती हुई अपने अपने दुखों को कह करके बांट लेती है। इसने उनका भाव बढ़ जाता है। इसलिए किंतु यहां पर मैं अकेला, मैं किसी से प्रज की बातें कह नहीं सकता। उनके लिए मुझे कितना दुख होता है यदि उद्धव को प्रेम की पाठशाला में भेज दूं और वहां कुछ दिन रहकर प्रेम की पाठशाला में जहां पर भी मैंने प्रेम सीखा वहीं पर उनको भेजा जाए। तो उद्धव वहां से सब समझ बूझ करके आएगा कि गोपी प्रेम कितना बड़ा ऊंचा है, विश्व में इसकी क्षमता नहीं। इसलिए
इसके प्रेम का कोई क्षमता नहीं, इसलिए उद्धव को भेजा जाए तो उद्धव सीख के आएगा।
इसलिए उद्धव जाएगा तो उसी पाठशाला में जाएगा और वहां कुछ प्रेम की बातें समझ करके आएगा। जो प्रेम किसको कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम का पराशर पंडित हो। प्रेम तो ढाई अक्षर का ही है किंतु जो इस प्रेम को ढाई अक्षर वाले को पढ़ लिया वो सब कुछ पढ़ लिया, उसके कुछ बाकी नहीं रह गया।
So now Shri Gurudev is continuing with Krishna Leela that when Krishna left from Vrindavan and went to Mathura, and while residing in Mathura, he was sent to the ashram of Sandipani Muni for education. Within 64 days, he learned 64 different arts. And at the time of his graduation, he asked for his teacher, what should I give you in Dakshina? So his guru said that my son has died, so you please, the ocean took it away, so please bring my son back. And Krishna went to Jampuri, to the abode of the Lord of Death, and then brought even his dead boy back alive. So one time when he was in Mathura, Krishna was sitting on the roof of his palace and he started looking towards Jamuna. And looking at Jamuna, tears came in his eyes. Uddhav, looking for Krishna, he came to the roof, and when he saw that Krishna had tears in his eyes, he asked, "Oh my dear friend, why are you crying?" So Krishna said that I am remembering my father Nand Maharaj, Mother Yashoda, my friends, Govardhan, Yamuna River, and the gopis. Not only more than even my mother and father, my beloved gopis. Why? Because gopis were so beloved to Krishna because they gave up everything. They did not care for what the society will say, what their families will say. They broke all social customs and to serve Sri Krishna. So their love was the highest. And why were they maintaining their life? So Krishna is saying that they would have actually died, but they are my life here and I am their life here. So thinking, if they give up their body in my separation, then I will also not be able to stay alive. That's the only reason they're keeping their life also. So he said to Uddhav that go to Vrindavan and there console my mother, father and the gopis. And he also gave Uddhav his own chariot, the chariot that he had taken from Kamsa. So Krishna was thinking that gopis are all together in Vrindavan and that in my separation they are lamenting, but they are able to share their lamentation and thus console each other. But here in Mathura, I am all alone. There is no one with whom I can talk of my pain and my feeling of separation from Vrindavan. So therefore, I should send Uddhav to Vrindavan, that he should also go and get educated in the university of the gopis and learn what is true love. I have also learned love only from there. So the love of the gopis is so high that in this entire creation there is nothing which is equivalent to the intensity of love that the gopis have for Sri Krishna. What is prem? Prem is dhai akshar. There are only 2.5 letters, syllables in this word prem. But one who understands and realizes this 2.5 syllables prem, for him there is no other knowledge left to learn.
कृष्ण ने और सोचा, ये उद्धव समझता है कि मैं मथुरा में हूं, कि मथुरा में मैं एक टुकड़ा हूं, पूर्ण रूप से तो मैं सब में ब्रज में ही रहता हूं, ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं रहता, किंतु गोपियां इसको समझती नहीं है। मैं यहाँ रहते हुए भी संपूर्ण रूप से वहां हूँ, और उद्धव समझते हैं कि मैं कृष्ण के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता, मैं कैसे जाऊं और वहां रहूंगा कैसे। कृष्ण ने कहा धैर्य धारण करो, जब तो वृंदावन जाएगा तो देखेगा वहां पर गोपियों के साथ में राज कर रहा हूं, और सब जितने हैं सब लीलाएं मैं कर रहा हूं, तुम जाओ, तुम्हारा जन्म कृतार्थ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं पूर्ण रूप से वही। उद्धव को उन्होंने रथ पर बैठा दिया, उद्धव चले। संध्या होते 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 गोधूली, गायें चरके के लाखों गायें चर रही हैं, चरना खत्म हो गया 3 बजे के बाद में, गायें लौट रही हैं, धूल उड़ रही है। देखा क्या, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, सखा लोग उनके चारों तरफ में उनकी कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। बरहा पीडम नट वर बपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रत वास कनक कभिशं वैजयंती चमालां रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंद
वृंदारण्यम सपदरवनम
प्रणामि साविशत कीर्ति कीर्ति। सखा लोग उनका गान कर रहे हैं, पीतांबर वैजयंती माला है, अद्भुत छटा निराली है, जो देखे उसी का चित्त कृष्ण के तरफ में आते, ऐसा रूप नहीं कहते। फिर नंद बाबा के द्वार पर गए, नंद बाबा ने सुना कि प्रेशे कृष्ण का सखा उद्धव आया, उन्होंने बड़े प्रेम से घर में ले गए। एक ब्राह्मण को कहा, आप कृपा करके कुछ खीर बना करके लाइए, उद्धव भूखा होगा खाएगा। वो ब्राह्मण खीर बनाया, किंतु घर में चीनी नहीं, बिना चीनी का ही, बिना गुड़ का ही खीर बना करके लाया, उन्होंने उद्धव जी को खिलाया। पूछना चाहते हैं जो उद्धव, कृष्ण मेरा कैसा है, किंतु गला भर आता है, पूछ नहीं सकते, रोने लगे, बोले कृष्ण को भूलने के लिए मैं यमुना के किनारे जाता हूँ, वहां पर याद आती है कि कृष्ण यहीं तो जल भरने के बहाने गोपियों से मिलते थे, वहां से मैं गोवर्धन जाता हूँ, उनकी लीलाएं वहां पर साबित हैं, नंदगांव जाता हूँ, बरसाना जाता हूँ, मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता। उद्धव, अरे ये मर्म की बातें हैं कि क्या कह रहा था,
कृष्ण को भूलना चाहता हूँ, भूल नहीं पाता हूँ।
हाँ, मैं भूलना चाहता हूँ कृष्ण को, कृष्ण भूल ही नहीं पाता। बड़े आनंद की बात है, कंस अपने कर्मों के कारण मारा गया, अब हमारा यही कहते कहते याद आई, आंखों में से आंसू आ गए, मेरा कृष्ण कैसा है ये कह ही नहीं सके। तो जब पशु कंस तो मारा गया और फिर किसी प्रकार से बोले हमारा लाला कैसा है, फिर उद्धव जी ने कहा जी कृष्ण तो इतना रो रहे हैं, कोई अपना पुत्र यदि कहीं कुछ हो जाए तो वो पुत्र के लिए रोता है। हम उसे समझाते हैं ये तो ऐसा ही जगत का नियम है, कोई आता है कोई जाता है, तो क्या कहूं, ये परम सौभाग्यवान है जो कृष्ण जिनके पुत्र हैं, यशोदा जी भी रोते रोते अंधी हो गई है। तो
उद्धव सज्जन क्या कहूं, आप सौभाग्यवान है, आप
कहूं जो सौभाग्यवान है, यही सोच करके उन्होंने कहा
अब मत रहिए,
आप तो बड़े सौभाग्यवान हैं जो कृष्ण ही आपके पुत्र। नंद बाबा कहने लगे कि हाँ पुत्र तो एक ही था,
पिता एक ही थे,
राम वनवास में चले गए, उन्होंने राम राम और फिर मेरे हृदय इतने कठोर है वज्र के समान, इतना होने पर भी हमारा लड़का विश्व ब्रह्मांड का अधिनायक कह रहे हो जी, हमारे आंगन में खेलता था, हम उसको ही कितना प्यार करते, और वही पुत्र हमको छोड़कर के चला गया, हम उसको प्यार नहीं दे सके, इसलिए रोने लगे।
Sushil Gurudev is narrating further.
1 hour.
Yeah. Krishna thought that Uddhav thinks that I live in Mathura, but actually only a part of me resides in Mathura. My full form, in my completeness, I only reside in Vrindavan. And so he said he wanted to send Uddhav to Vrindavan. So Uddhav said, how can I go there? So Krishna said, please be patient. You go to Vrindavan and there, everywhere you will see my pastimes because I reside in my completeness in Vrindavan. So Uddhav, he put Uddhav on his chariot and Uddhav went towards Vrindavan. And when he reached there, the cows were coming back after grazing in the forest. It was after 3 p.m. So they had completed grazing and they were coming back. And all the place, because of them moving, the dust from their feet was going up in the air. Godhuli was there everywhere. And he saw, he had a vision of Krishna playing on his flute, looking very, very beautiful. Barha Pitam Natvar Vapu Karnyo. So he saw that all the friends were chanting this Barha Pitam Natvar Vapu Karnyo Karnikaram. They were chanting this verse. And he had this vision. So, Krishna is wearing a very beautiful Vajanti Mala. And anyone who sees this beautiful form of Krishna will be attracted. So, when Nand Baba heard that Uddhav had come, he from Mathura, he's a friend of Krishna, with great love, he brought him to his home and asked one Brahman to bring some kheer for him. Because Uddhav was hungry. So this Brahman went to make some kheer, but he had no sugar in his home. So he brought the kheer just like that and they offered that to Uddhav. Nand Baba wanted to ask Uddhav that how is Krishna doing? But he was so overwhelmed that he could not ask. Tears would choke his throat. Right? So he said to Uddhav that I am trying to forget Krishna. I go to Jamuna, but when I go there, I recall all the past times and how Krishna used to come here and meet the gopis. I go to Nandgaon, to Barsana, everywhere, but no place I get any solace. So then he said, oh, it is actually very nice to hear that actually Kans, because of his past deeds, he has finally left his body, he has died. So finally somehow, and then he wanted to actually ask that how is Krishna doing, but every time the tears would fill his eyes and he would choke. But finally he said, oh, how is my Lala doing? And Uddhav is observing that how Nand Maharaj is crying in separation from Krishna. So Uddhav is thinking that if someone's son dies, then you can try and console, oh, this is the law of nature, anyone who has come must leave. And he's trying to think that how should I console? Mother Yashoda is also crying. So he's thinking, I should say that, oh, you are so fortunate that Krishna is your son, the Supreme Personality of Godhead. And finally, that's what he said to Nand Maharaj. When Nand Baba heard this, he said, you are right, but there was only one father, Dashrath Maharaj Dashrath, who, when his son Sri Ram left for the forest, in his separation, he said Ram, and he immediately left his body. But see me, my heart is so like a stone, so hard, that even though my son, whom you are saying, is the creator, is the Lord of the entire universe, he used to play in my courtyard, but he has left, he has gone, but still we are surviving. So this is prem.
Raat bhar aise katha hote rah gayi. Savere Krishna Nandgaon mein ek sarovar hai jiska naam Krishna sarovar hai. Snan kiya aur kadamb kyari ek sthan hai. उसके तरफ में देखा लाखों गोपियां घर बार हीन होकर घर बार छोड़ दी है, घर नहीं होती और वहीं पर भ्रमर गीत हुआ, जो भागवत की निधि है, समय हो गया है, आज यही तक कथा समाप्त करते हैं, फिर कभी यदि समय होगा तो इसके बाद की कथा सुनाएंगे।
और बाद की कथा बाजार में होगा।
So Shri Gurudev is saying like this, all night long, they kept conversing with each other, and in the morning, Uddhav went to Krishna Sarovar to bathe, and there is a place called Kadam Kyari, where all the gopis were there, they had left everything, and they were staying in Kadam Kyari, hundreds and thousands of them, they never went back to their homes, and this is the place where Bhramar Geet, the pastime took place, and this is in Srimad Bhagavatam, and this is the greatest treasure of Srimad Bhagavatam. So Sri Gurudev is saying that if time allows in the future, I will speak more, and Gurudev is going to speak more on the 10th canto in Badger.
California.
Gaur Premanande Krishna Govinda Govinda Gopala Krishna Govinda Govinda Govinda